प्रॉब्लम्स को बाएं, हैप्पीनेस को हाई में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में नींद न आने की समस्या एक आम समस्या हो गई है, तो इस समस्या का निवारण करने के लिए हमें चाहिए स्लीप मैनेजमेंट। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं बीके तृप्ति जी से। ओम शांति तृप्ति।
ओम शांति
सिस्टर तृप्ति, नींद की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या उपाय हैं और हम क्या ऐसा करें कि हमें नींद की प्रॉब्लम के लिए दवाइयां ना खानी पड़े।
वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले कहते हैं ना, तो इसी प्रकार जब हम ये जान गए हैं कि जब हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, एक्ट करते हैं, तब हम सिर्फ वर्ड्स और एक्शंस के साथ ही एक्ट नहीं करते, थॉट्स भी होते हैं जो हमारे कर्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार जब हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाते हैं, घर पे रहने वाले घर के काम करते हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो इस प्रकार से हम कोई भी काम करें, बड़ा काम करें या छोटा काम करें, इसमें हमारे वर्ड्स, एक्शंस और हमारे थॉट्स, ये सभी सही और समान मात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है जब हम कहते हैं कर्म, और जब हम कार्य कुशलता की बात करते हैं, जब हम वर्क में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो जरूरी है कि इसमें ये जो तीनों इनपुट्स जा रहे हैं, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, ये तीनों इफेक्टिव हो, और इन तीनों की जितनी इफेक्टिवनेस होगी उतना ही हमारी कार्य कुशलता की, हमारे वर्क की, हमारे आउटपुट की इफेक्टिवनेस होगी। क्योंकि हमने देखा है यह शरीर कुछ और नहीं एक कंप्यूटर की तरह है, जिस प्रकार से इनपुट्स होंगे उसी प्रकार के आउटपुट होंगे।
तो ये जो फॉर्मूला है थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन का, अगर हम किसी में भी इम्प्लीमेंट करें, किसी भी समस्या पे उसको उतारू करें, तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए।
बिल्कुल, अगर हम सही तरीके से थॉट्स का इस्तेमाल करें, माना पॉजिटिव थॉट्स को यूज करें, पॉजिटिव थॉट्स को अगर यूज करेंगे तो हमारे वर्ड्स कैसे होंगे,
पॉजिटिव होंगे,
जो सोचेंगे अच्छा वह बोलेंगे, सही है। और हमारे एक्शंस कैसे होंगे,
एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, कार्य सही होंगे,
कार्य सही होंगे। तो जिस प्रकार से हम चिंतन करेंगे उस प्रकार से ही हम वर्ड्स भी बोलेंगे, वैसे ही हम एक्ट भी करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने एक्शंस की, हम अपने काम की, हम अपने कार्य की कुशलता को बढ़ा सकते हैं, वर्क इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम कभी भी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करें तो इनपुट्स जो जाते हैं उन इनपुट्स की क्वालिटी को हमें बहुत ही स्ट्रांगली गवर्न करना चाहिए, स्ट्रांग इनपुट्स जाने चाहिए, तभी हम रिजल्ट या आउटपुट स्ट्रांग हो, इसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं इनपुट्स, तो इनपुट्स हम कैसे करते हैं, इनपुट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर। जब हम शरीर को, अपने मन को किसी कार्य में लगाते हैं तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, राइट? और जब हम इस शरीर की बात करते हैं तो यह शरीर, इसे हमें स्वस्थ रखना है, इसे निरोगी रखना है, और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने देखा मन को इफेक्टिव बना सकते हैं पॉजिटिव थॉट से, और शरीर को इफेक्टिव बनाया जा सकता है अच्छी डाइटरी हैबिट्स, तो बैलेंस्ड डाइट, शुद्ध सात्विक आहार, एक्सरसाइजिंग डेली, रेगुलर मेडिकल चेकअप, और साथ में इम्पॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग एंड साउंड स्लीप। तो अगर हम अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में अगर नींद नहीं दे सके तो इस शरीर को यह मालूम है कि हाउ टू स्नैच स्लीप फ्रॉम अस, यह हमसे नींद छीन लेता है। इसलिए जरूरी है हम बहुत ही केयरफुली पर्याप्त मात्रा में इस शरीर को हमें नींद इस शरीर को दें। पर सवाल यह उठता है कि जब हम कहते हैं पर्याप्त मात्रा, तो इस पर्याप्त मात्रा का हम निर्धारण कैसे करें?
तो सिस्टर तृप्ति, हम ये पर्याप्त मात्रा में नींद की जो बात कर रहे हैं, तो ये पर्याप्त मात्रा कितनी है? किसी भी एक इंसान को कितनी नींद जरूरी है?
रिसर्चेस के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए 5 से 6 घंटे की नींद यह पर्याप्त होती है, सफिशिएंट होती है। किसी भी मनुष्य को खुद को एनर्जाइज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, उतनी एनर्जी ये 5 से 6 घंटे के बीच में मिल सकती है। और जब हम बात करते हैं 5 से 6 घंटे की, तब हम बात कर रहे हैं अपने स्लीप के साइकिल्स की। और ये स्लीप की साइकिल्स होती हैं अराउंड 40 to 45 मिनट्स पर साइकिल की ड्यूरेशन होती है, माना 40 से 45 मिनट तक एक साइकिल की अवधि होती है। और नॉर्मली 3 साइकिल्स ऑफ स्लीप इतनी एनर्जी हमें देती है कि हम फिर फ्रेश होते हैं और दिन भर कार्य करने के लिए हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो जब हम बात करते हैं स्लीप साइकिल्स की, जब हम बात करते हैं हमारे नींद के साइकिल्स की, तो हर साइकिल होती है 90 to 120 मिनट्स की हर साइकिल होती है। और हर साइकिल में क्या होता है? क्या हमें संपूर्ण आराम, फुल रिलैक्सेशन क्या हर वक्त मिलता रहता है? उसमें भी ऐसा नहीं होता। हम अगर देखें तो फर्स्ट 50% ऑफ एवरी साइकिल, 50% तक हमें लाइट स्लीप होती है, माना ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलता। उसके बाद के 30% में हमें थोड़ा ज़्यादा आराम मिलता है और इसे हम कहते हैं डीप स्लीप। और जो आखिरी के 20% होता है, जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM, यह वह समय होता है जब हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है।
सिस्टर तृप्ति, ये REM क्या है?
REM माना रैपिड आई मूवमेंट। कहते हैं ना, जब हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम की स्टेट होती है, और तब कहते हैं सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को। और वो कैसा होता है? क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन देने वाली वेव्स, माना डेल्टा वेव्स, इस शरीर में जेनरेट होती हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें रिलैक्स करती हैं। पर ये डेल्टा वेव्स हमें कितनी मात्रा में चाहिए? अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स की स्लीप हमें डेल्टा वेव्स की चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारी पहली 3 साइकिल्स होती हैं, उसमें इतनी डेल्टा वेव्स क्रिएट हो जाती हैं जितनी इस शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। और उसके बाद 6 घंटे के बाद, 5.5 या 6 घंटे के बाद, हम कितना भी सो लें, पर उसके बाद डेल्टा वेव्स जेनरेट नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी को उससे ज़्यादा रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद मना, क्योंकि हमारी आदत है इसलिए हम ज़्यादा सोते हैं, या फिर पड़े रहना अच्छा लगता है, या कभी कभी आलस्य के कारण भी हम ज़्यादा सो लेते हैं। तो हम, हाँ जी
सिस्टर तृप्ति, ये डेल्टा वेव्स के बारे में आपने बताया, तो वो हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक होती हैं?
तो ये जो हम डेल्टा वेव्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की सहायता से देखें, तब हमारे ब्रेन में हमारे चिंतन के कारण कुछ वेव्स जेनरेट होती रहती हैं। और ये जो वेव्स जेनरेट होती हैं, तो ये वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं। जैसे कि हमने देखा, मन क्या है? एक पानी का तालाब है, इट्स पूल ऑफ वाटर। और इस पानी में अगर हम कुछ स्टोन्स फेंक दें, तो क्या होता है? वेव्स जनरेट होती है ना, हमें दिखती है पानी की तरंगे। तो उसी प्रकार ये वेव्स हमारे मन में भी जनरेट होती है, और ये वेव्स हमारे ब्रेन तक भी पहुंचती हैं, और इन वेव्स को मेजर किया जा सकता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की मदद से। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये वेव्स हमारे मन में कैसे क्रिएट होती हैं। कैसे क्रिएट होती हैं इला?
डीप स्लीप में, जब हम शांतिपूर्ण नींद ले रहे होते हैं, तब जनरेट होती हैं।
हाँ, डेल्टा वेव्स डीप स्लीप में जनरेट होती हैं, क्योंकि डेल्टा वेव्स सबसे पावरफुल वेव्स होती हैं और इसमें डेल्टा वेव्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है जो हमें डीप स्लीप में मिलती हैं। और नॉर्मली हम कोई भी थॉट जनरेट करते हैं, भले हम जागे हुए हो, जागरूक अवस्था में हो या सुप्त अवस्था में, स्लीप में, हम हमेशा ही सोचते रहते हैं और हर थॉट के साथ माना एक चिंतन किया, एक थॉट क्रिएट किया, मतलब एक स्टोन उस पानी में डाला। तो हर थॉट के साथ मन में वेव्स जनरेट होती हैं और ये वेव्स हमारी ब्रेन तक पहुंचती हैं। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा वेव्स जनरेट होती हैं, ब्रेन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। जब हम कम सोचते हैं तो कम वेव्स जनरेट होती हैं और जब हम सोते हैं तो वेव्स जनरेशन माना हमारा थॉट प्रोसेस स्लो होता जाता है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे थॉट्स और वेव्स आपस में जुड़े हुए हैं? हमारे मन में जितने ज़्यादा थॉट्स आएंगे उतनी ही ज़्यादा वेव्स जनरेट होंगी।
ये बिल्कुल सही है, हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हम वेव्स को जनरेट करेंगे और वो जो पानी है पॉन्ड का, उसकी स्टिलनेस को, उसकी स्टेबिलिटी को हम उतना ही डिस्टर्ब करेंगे। तो व्हेन माइंड इज अलर्ट एंड अवेक, जब हम जागृत होते हैं तब हम बीटा वेव्स नॉर्मली जनरेट करते हैं जो कि 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। और कहते हैं हाई बीटा वेव्स माना 40 से अधिक फ्रीक्वेंसी हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जाती है माना थॉट उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक बीमारियाँ माना पागलपन और इससे रिलेटेड बीमारियाँ हमें दिखना शुरू हो जाती हैं। और अब हम बात करें, जब माइंड अवेक तो रहता है, थोड़ा सा अलर्ट भी रहता है, पर अब हम सोने की कोशिश करते हैं, नींद में हम प्रवेश करते हैं, नींद की पहली साइकिल की शुरुआत, इस समय क्या होता है? हम थोड़े से अलर्ट रहते हैं और थोड़ी सी नींद में भी हम घुसने लगते हैं। इस समय जो वेव्स जनरेट होती हैं वो होती है अल्फा वेव्स माना 8-13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स, और ये वेव्स भी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। इससे ज़्यादा हम जब गहराई में जाते हैं नींद की, तब थीटा वेव्स जनरेट होती हैं जो कि 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और जब हम बात करते हैं डीप स्लीप की, ड्रीम स्टेट की, जब हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और तब सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है क्योंकि डेल्टा वेव्स माना 1-4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हमारे मन में जनरेट होती हैं, इसलिए हमारा मन भी कम हलचल में होता है, ब्रेन की भी हलचल कम होती है, इसलिए स्टिलनेस ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जब ब्रेन कम काम करता है, मन काम करता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी आराम से काम करते हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसी, उनकी भी रफ्तार काम करने की कम हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो माइंड बॉडी एंड सोल हम कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होने के बाद रिचार्ज हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 5.5-6 घंटे की नींद में हमें उतनी डेल्टा वेव्स, कितनी, अराउंड 45-50 मिनट्स की डेल्टा वेव्स मिल जाती हैं जो हमें चार्ज करने के लिए पर्याप्त होती हैं। और सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, अगर साउंड स्लीप होती है, कहते हैं ना आज मुझे अच्छी नींद आई तो इसलिए आज मैं फ्रेश हूँ, आज मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। और कभी रात को जब हमारी नींद अच्छी नहीं होती, राइट, या तो फिर बार बार फ़ोन की घंटी बजती है, या फिर जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे उठते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमारी नींद ढंग से होने,
तब नींद नहीं हो पाती और फिर सुबह हम फ्रेश नहीं महसूस करते।
तब हम कहते हैं ना आज मेरी नींद अच्छी नहीं हुई, सफिशिएंट नींद नहीं मिली, इसलिए क्या हुआ, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही, मैं लो फील कर रहा हूँ, मुझे ड्रग्जीनेस लग रहा है, और सोने की इच्छा है क्योंकि मैं और एनर्जी अपने मन में जनरेट करना चाहती हूँ और रिलैक्सेशन प्राप्त करना चाहती हूँ। तो इसलिए हमने यह देखा कि जब हम सोते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में रिलैक्सेशन मिलता है, पर अगर हम ज़्यादा सो लेते हैं तो क्या होता है, रिलैक्सेशन की जगह एनर्जी जेनरेशन की जगह एनर्जी ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें ज्यादा सोने की अगर आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बाद के जो हमने घंटे देखे वह एक्चुअली लेजीनेस है। तो लेजीनेस हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है, और जब कोई भी नेगेटिव अगर फीलिंग हम में जनरेट हो जाती है तो वह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती। लेजीनेस इज ऑल्सो नेगेटिव, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में एनर्जी ड्रेन होने लगती है। तो ज़रूरी है हम जैसे सारे सभी बात करते हैं इफेक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, इफेक्टिव वर्किंग के लिए, कार्य कुशलता के बारे में जब बात करते हैं तो हम सब लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, फूड मैनेजमेंट की, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी बजे कौन सा काम करना है, सारी बातें करते हैं। और जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसे सब सिखाते हैं। अब हम यह जान गए हैं इसी प्रकार कैसे सोना है, यह भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और अब से हम क्या करेंगे, हम जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ अपने स्लीप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम पर्याप्त मात्रा में अपनी नींद ले रहे हैं, या ज़्यादा तो नहीं और कम तो नहीं है। और ऐसे खुद के बारे में अपनी नींद को चेक करके, एनालाइज करके देखेंगे कि किस प्रकार से, अगर यह डीरेल्ड है हैबिट या फिर थोड़ी सी डाइवर्टेड है, तो किस प्रकार से हम गाड़ी को पटरी पे फिर से लगा सकते हैं।
तो सिस्टर तृप्ति, अब हमें अवेयरनेस आ गई है कि हम स्लीप मैनेजमेंट करें, और अब से हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा स्लीप मैनेजमेंट करें। पर स्लीप मैनेजमेंट सदैव संभव नहीं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम शादी में चले गए, हम लेट नाइट मूवी चले गए, या फिर बच्चे की परीक्षा है तो वो देर तक पढ़ता रहा, तो ऐसी स्थितियों में हम कैसे स्लीप मैनेजमेंट पे ध्यान दें?
नॉर्मली हम देखते हैं और कहा भी जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हम सही समय पर सो न सकें, जल्दी बेड पर जा न सकें, नॉर्मली हम कहते हैं कि रात को 10 बजे सोना और सुबह 4-4:30 बजे उठना, यह हमारे लिए लाभदायक है। और अगर देर हो भी जाए, रात को 11 भी बज जाए, तो 11 से 5 या सुबह 5:30 तक की नींद हमारे लिए पर्याप्त होती है। पर अगर किसी कारणवश हम इस प्रकार की नींद नहीं ले सके तो हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि हम जब एक साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारी स्लीप कितने साइकिल्स की होती है?
3 साइकिल
की होती है। तो हमने जब यह जाना कि 3 साइकिल्स नॉर्मली हम कंप्लीट करते हैं तब अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करते हैं, रिफ्रेश्ड फील करते हैं, और हर साइकिल होती है 90 मिनट्स to 120 मिनट्स तक, 90 से 120 मिनट की हर साइकिल होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन साइकिल्स को डिवाइड कर सकते हैं। रात को अगर बहुत देर हो गई तो 2 साइकिल्स की नींद लेके, और फिर दिन में दोपहर को समय निकाल के 1 साइकिल की अच्छी सी नैप, अच्छी सी नींद दोपहर को ली जा सकती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे माइंड की जो रिक्वायरमेंट है, वो हम फुलफिल कर सकते हैं। अगर समझो रात में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 1 साइकिल रात को ले लें, इन्हें जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो स्लीप को मैनेज करने की, और दूसरे दिन जब दोपहर को कभी समय मिले तो 2 साइकिल्स की स्लीप ले लें। तो इस प्रकार से जब हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम स्लीप को अपने किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर साइकिल के बाद हमें थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगती है, और उस समय पॉसिबल है कि हम उठ सकते हैं पूरी नींद न होने के पहले भी। तो इस प्रकार हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी नींद को हम अच्छे तरह से मैनेज करें, कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपनी नींद को मैनेज नहीं किया सही तरीके से, इसे कंट्रोल नहीं किया सही तरीके से, तो हमने क्या देखा, इस शरीर को मालूम है, यह शरीर जानता है कि हमारी नींद कैसे छीन लेना। दिस बॉडी नोज हाउ टू स्नैच स्लीप फ्रॉम अस। और फिर क्या क्या होने लगता है, इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी, हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन, और तरह तरह की बीमारियां। तो अगर हमें इन तरह तरह की बीमारियों से सचेत रहना है, बचा हुआ रहना है, तो जरूरी है कि हम अपने स्लीप को अच्छे से मैनेज कर सकें।
आज सिस्टर तृप्ति ने हमें स्लीप मैनेजमेंट के बारे में बताया। हम सभी के लिए जरूरी है कि हम स्लीप मैनेजमेंट के प्रति अवेयर हो जाएं। हर किसी व्यक्ति को 5.5 से 6 घंटे की नींद अनिवार्य है, तभी उसी चरण में 3 साइकल्स होती हैं, जिसमें अल्फा और बीटा और गामा और डेल्टा वेव्स निकलती हैं। अल्फा और डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं, वो हमारी बॉडी को रिचार्ज करती हैं और पूरे दिन के लिए हमें तैयार करती हैं। तो आज से हम सबको मिलके कहना है, स्लीप प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ बीके तृप्ति जी का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए ओम शांति।
मैं कॉलेज लाइफ में मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता था, मीन्स आई वॉज नॉट सोशल। तो ये मेरी समस्या को लेके मैं बहुत परेशान था, क्योंकि कॉलेज में तो जाता था लेकिन किसी से बात वगैरह करना मेरा उतना होता नहीं था, आई वॉज वेरी शाय। तो मेरा एक दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करके एक संस्था है, उसमें आप आ जाओ, उसमें 7 दिन का कोर्स रहता है। और 7 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसी संस्था से जुड़ा रहा, तो इसमें मैं लोगों से बात करना चालू हो गया, मेरा बात करना चालू हो गया। एक एक करके एक एक दिन जैसे जैसे निकलता गया, महीना गया, 2 महीने हुए, तो मैं मेरे अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि मैं बहुत ही सोशल हो गया और मैं बहुत खुश हुआ।
आज मनुष्य स्वयं को ही भूल चुका है, वह अपने नाम, संबंध, पद एवं शैक्षणिक योग्यता से ही अपना परिचय देता है। परंतु कहते हैं सत्य अनादि है, वह कभी नहीं मिटता। स्थूल पद, संबंध, यह सब विनाशी है। सत्य तो यह है कि हम सब इस देह से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हैं, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में सोल, लाइफ एनर्जी, स्प्रिट या आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जैसे जीने के लिए 5 तत्व चाहिए, इसी प्रकार शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सुख एवं ज्ञान, यह 7 गुण आत्मा को चाहिए। यह आत्मा की निजी संपत्ति है और हर आत्मा उसका अनुभव निरंतर करना चाहती है। आत्मा में ही मन है, बुद्धि है और संस्कार है। मन में जैसा चिंतन चलता है, वैसा ही शरीर के माध्यम से अनुभव होता है। आज व्यक्ति की सोच नकारात्मक होने के कारण उसका मन भय व चिंता से ग्रस्त है। वह हर परिस्थिति, हर घटना को नकारात्मक ढंग से ही देखता है। परंतु अगर मनुष्य अपनी सोच को बदल ले और हर घटना के सकारात्मक पहलू को ही देखे, तो वह बहुत सारी समस्याओं से एवं तनाव से मुक्त हो सकता है। व्यक्ति सोचता है कि शायद कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उसके तनाव का कारण है, परंतु सत्य तो यह है कि कहीं न कहीं अपने तनाव का कारण हम स्वयं ही हैं। अतः तनाव यह संदेश देता है कि आवश्यकता है हमें स्वयं को बदलने की। अगर मान भी लिया जाए कि दूसरे हमारे तनाव का कारण हैं, तो हम दूसरों को तो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परंतु हम स्वयं को तो बदल सकते हैं। समस्याओं से भागने या किसी एकांत स्थान पर चले जाने से हमें समाधान प्राप्त नहीं होगा। जीवन के इस खेल को हमें खेलना ही होगा, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है,
सत्यम शिवम सुंदरम।
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है,
सत्यम शिवम।
शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं, शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।